अस्सलामु अलैकुम। आज मंगल है, दिसंबर की 27 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में सरगर्म कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से नवंबर में जंगबंदी माहिदा ख़त्म करने के बाद जहां दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, वहीं बलूचिस्तान में कलदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में अचानक इजाफा कर दिया है। बलूचिस्तान के 8 अजला में 25 दिसंबर को एक ही दिन में 9 बम धमाकों समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर फायरिंग के वाकयात भी रिपोर्ट हुए थे। कलदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने बेशतर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। महकमे दाखला बलोचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में गुज़श्ता साल के निस्बत रवां साल दहशतगर्दी के वाकयात में 11% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में रवां बरस दहशतगर्दी के 290 वाकयात में 125 अफराद हलाक और 417 जख्मी हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक महफूज फैसला मंगल को जारी किया, जिसके मुताबिक इंतखाबात के लिए जारी शेड्यूल मनसूख कर दिया गया है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए थे कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फरीकैन का मौकिफ सुना जाए। फरीकैन का मौकिफ सुनने के बाद कमीशन ने विफाक की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की इस्तेदा मुस्तरद कर दी गई। दोनों जमातों ने इस्लामाबाद की 101 यूनियन कौंसिलों में बल्दियाती इंतखाबात कराने की दरख्वास्त की थी, जबकि कमीशन ने मंगल को अपने फैसले में हुकूमती दरखास्त के मुताबिक 125 यूनियन काउंसिल्स में इंतखाबात कराने की दरखास्त मंजूर की है। इस फैसले के बाद ये वाजे नहीं किया गया कि इस्लामाबाद के आइंदा इंतखाबात कब मुमकिन हो सकेंगे। पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो की 15वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम मुल्क में दुआइया तकरीबात मुनक्किद करने के साथ साथ सूबे सिंध में बेनज़ीर के आबाई कस्बे गढ़ी खुदाबख्श में एक जलसे आम भी मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी खिताब किया। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर सन 2007 को रावलपिंडी के लियाकतबाग में एक खुदकुश हमले में जान दे बैठी थी। पाकिस्तान के वजीर आजम शाहबाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो को इंसानी हकूक और जमहूरियत का आलमबरदार करार देते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की सियासत पर अनमिट नकोश छोड़े हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में कहा कि आईन और जमहूरियत की खातिर बेनजीर भुट्टो ने जिन मुश्किल का सामना किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। तालिबान मुखालिफ कौमी मुजाहमती महाज ने पिछले 2 दिनों में सूबे बगलान के ज़िले अंदराब में तालिबान के साथ लड़ाई में अपने अहम कमांडर खैर मोहम्मद खैर खां और तकरीबन 25 जंगजुओं की हलाकत की तस्दीक की है। सिबगतुल्ला अहमदी के मुताबिक लड़ाई में एक और कमांडर गाजी मुरादी की भी हलाकत हुई है। कौमी मुजाहमती महाज ने यह भी दावा किया है कि फरीकैन के दरमियान 30 घंटे तक जारी रहने वाली लड़ाई में 30 तालिबान भी मारे गए हैं। इसी दौरान फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद ने एक पैगाम में कहा कि कमांडर खैर मोहम्मद खैर खां और जंगजुओं की हलाकत का जल्द इंतकाम लिया जाएगा। तालिबान की जानिब से इस बारे में कोई बयान ताहाल सामने नहीं आया है। अक्वामे मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड या UNFPA की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नतालिया कन्नीम ने एक बयान में तालिबान हुकाम की तरफ से ख्वातीन के लिए आला तालीम और कौमी और बैन अल-अक़वामी इंसानी तंजीमों के साथ काम करने पर पाबंदी के हालिया हुक्मनामों की मजम्मत की है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि ये फैसले बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हज़ारों हिंदू सरकारी मुलाज़मीन ने जो रवां बरस मुश्तबा अस्करियत पसंदों के हाथों अपने साथियों की टारगेट किलिंग के बाद हिफाजती खदशात के पेश नज़र मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर में खिदमात अंजाम देने से इनकार कर रहे हैं, हुकूमत के काम नहीं तो तनख्वाह नहीं के फरमान के बाद अपनी एजिटेशन तेज कर दी है। इन मुलाज़मीन का ताल्लुक भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हिंदू अक्सरियती जम्मू खत्ते से है। इन मुलाज़मीन ने सरमाएदार हुकूमत जम्मू में कई मुजाहरे किए हैं। एक मुजाहरा नई दिल्ली में बरसरे इख्तदार भारतीय जनता पार्टी के मकामी दफ्तर के बाहर किया गया। मुलाज़मीन के एक तर्जमान ने नामनिगारों से गुफ्तगू के दौरान हुकूमत पर अदम एहसास और उनके तई बेहिसी परतने का इल्जाम लगाया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हड़ताली मुलाज़मीन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के एक तर्जमान का कहना है कि इन मुलाज़मीन के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि क्या उन्हें वादी कश्मीर से, जहां वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, तब्दील करके जम्मू खत्ते में तैनात किया जा सकता है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन में अमन की कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है। इस बातचीत में यूक्रेनी रहनुमा ने अमन फार्मूले को नाफिज करने में भारत से मदद मांगी। ज़ेलेंस्की ने पीर को ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ एक फोन कॉल में G20 ग्रुप की इस साल की सदारत संभालने पर बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने मजीद लिखा कि इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अमन फार्मूले का ऐलान किया था और अब उसके नफाज में भारत की शिरकत पर एतमाद करते हैं। भारत ने यकुम दिसंबर से शुरू होने वाले साल के लिए 20 बड़ी मईशतों के ग्रुप की सदारत संभाली है। ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता माह इंडोनेशिया में G20 सरबराही इजलास से एक वर्चुअल खिताब में ग्रुप से कहा था कि यूक्रेन के 10 निकाती अमन फार्मूले पर अमल किया जाए, जिसमें यूक्रेन से रूसी फौजियों के इनखला और उसकी इलाकाई सालमियत की बहाली का मुतालबा किया गया था। रूसी वजीर खारजा सर्गे लेवरोफ ने सरकारी मीडिया को बताया है कि ये यूक्रेन की हुकूमत पर मुनसिर है कि यूक्रेन में लड़ाई कब तक जारी रहेगी। लेवरोफ ने कहा कि यूक्रेन रूस की उन तजावीज को जानता है जो यूक्रेन की सरजमीन को गैर फौजी बनाने और यूक्रेन से रूस को लाहिक खतरात के खात्मे के लिए है। इनमें वो चार इलाके भी शामिल हैं जिनका रूस ने इल्हाक का दावा किया है। बैन अल-अक़वामी बिरादरी ने डोनेस्क, लोहांस, खियरसन और ज़ापोरोजिया के रूस के साथ इल्हाक के दावों को भरपूर तरीके से मुस्तरद कर दिया है। लेवरोफ ने मजीद कहा कि अगर यूक्रेन रूस के मुतालबात को पूरा नहीं करता तो फिर इस मामले का फैसला रूसी फौज करेगी। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस अपनी फौजों को वापस बुलाकर और यूक्रेन की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत को बहाल करके किसी भी वक्त इस जंग को रोक सकता है। यूक्रेन के वजीर खारजा का कहना है कि उनकी हुकूमत फरवरी के आखिर तक अक़वामे मुत्तहिदा में अमन सरबराही इजलास मुनक़िद करने का इरादा रखती है, जिसमें सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस रूस की जंग का एक बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुमकिन तौर पर सालिस होंगे। वजीर खारजा दिमित्री कोलिबा ने पीर को दी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के गुज़श्ता हफ्ते दौरे अमरीका के नतायज से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। कोलिबा ने इंकशाफ किया कि अमरीकी हुकूमत ने खसूसी मनसूबा बनाया है जिसके नतीजे में पैट्रियट मिसाइल की बैटरी को मुल्क में फाल करने के लिए 6 माह से भी कम वक्त लगेगा। आमतौर पर तरबियती अमल 1 साल में मुकम्मल होता है। इसराइल की पार्लियामेंट ने मंगल के रोज एक मुतनाज़ कानून मंजूर करके बेन्यामिन नेतन्याहू की बतौर वजीर आजम वापसी की राह हमवार कर दी है। कानून साजों ने आज मंगल के रोज एक ऐसे कानून की मंजूरी दी जिसके तहत किसी भी ऐसे शख्स को वजारत का अहल करार दिया गया है जो किसी जुर्म के इर्तिकाब का कसूरवार तो हो लेकिन उसे हिरासती सजा न दी गई हो। नेतन्याहू अदालत में बदउनवानी के इल्जामात का मुकाबला कर रहे हैं और पहले भी इसराइल में तवील अरसे तक वजीर आजम का मनसब संभाल चुके हैं। इंडोनेशिया के शिमाली सूबे आचे के समंदरी साहिल पर कमजोर और थके हुए रोहिंग्या मुसलमानों का एक ग्रुप पहुंचा है। गुज़श्ता 2 रोज में यह वहां पहुंचने वाला दूसरा ग्रुप है। पुलिस का कहना है कि कम से कम 185 मर्द, खवातीन और बच्चे शाम के वक्त साहिल समंदर पर लकड़ी की एक कश्ती से उतरे, जो पानी की कमी और थकन की वजह से कमजोर दिखाई दे रहे थे। इमिग्रेशन हुकाम और पुलिस पनाहगुजीनों की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो रोहिंग्या अफराद के उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिनके बारे में अक्वामे मुत्तहिदा ने इत्तला दी थी कि वो 1 माह से बहरा इंडमान में एक छोटी कश्ती में सवार हैं। UNHCR ने जुमे के रोज मुल्कों पर जोर दिया कि वो पनाहगुजीनों को बचाएं, क्योंकि रिपोर्टों से जाहिर होता है कि पनाहगुजीनों की हालत बाई से तशवीश है, क्योंकि उनके पास खुराक और पानी की किल्लत है। ताइवान की सदर साई एंग वेन ने मंगल को कहा है कि ताइवान सन 2024 से लाजमी फौजी खदमात को 4 माह से बढ़ाकर 1 साल तक कर देगा, क्योंकि जमहूरी तौर पर हुकूमत करने वाले जजीरे को अपने बड़े पड़ोसी चीन की तरफ से लाहिक खतरात बढ़ रहे हैं। अमरीका ने ताइवान पर अपनी फौज को जदीद बनाने के लिए दबाव डाला है ताकि हदफ बनने की सूरत में ये चौकस और मजबूत हों। ताहम साई ने कहा कि इन असलाहत के लिए वॉशिंगटन की तरफ से कोई दबाव नहीं था। इससे कबल ताइवान की हुकूमत ने पीर को बताया कि चीनी फजाइया के 71 जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ताइवान के फजाई दिफाई जोन में दाखिल होकर परवाजें की हैं। उसका कहना था कि यह चीन की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी दरअंदाजी है। चीन की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि उसके तैयारों ने इतवार के रोज ताइवान के गिर्द समंदर और फजा में हमले की मशकें की, जो ताइवान और अमरीका की जानिब से इश्तियाल अंगेजी का जवाब था। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने हुक्मरान वर्कर्स पार्टी के एक अहम इजलास का आगाज कर दिया है। सरकारी मीडिया के मंगल के रोज जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वो अक्सर नए साल के मौके पर अहम पॉलिसी फैसलों का ऐलान करने के लिए इस इजलास का इनेकाद करते हैं। पीर के रोज कशीदगी का एक नया दौर शुरू हुआ जब शिमाली कोरिया के 5 ड्रोन्स जनूबी कोरिया में दाखिल हुए और सोल ने जवाबन लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टरों से हमला करने और उन्हें मार गिराने की कोशिश की। किम को अपने हथियारों के प्रोग्रामों पर बैन अल-अक़वामी पाबंदियों, एंटी कोरोना वायरस लॉकडाउन और कुदरती आफात के नतीजे में बढ़ते हुए माशी चैलेंजों का भी सामना है। अमरीका में यकबस्ता सरमाई तूफान से मुतासर रियासतों में अब तक 55 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों लोग शदीद बर्फबारी के बायस घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हुकाम का कहना है कि बर्फबारी की वजह से हजारों घरों और कारोबारों को बिजली की फराहमी मुनक़ता है। ये खदशा भी है कि घरों में फंसे लोगों में मजीद हलाकतें हो सकती हैं। तेज हवाओं के साथ ये तूफान रियासत न्यूयॉर्क के दूसरे बड़े शहर बफलो से इतवार को टकराया। इन हालात ने इमरजेंसी रिस्पांस की कोशिशों को मफलूज कर दिया है। मौसम सरमा के हालिया बर्फानी तूफान की कोई मिसाल नहीं मिलती, जो कनाडा के करीब अजीम झीलों से मेक्सिको की सरहद तक फैला हुआ है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।